गोल्डन नियम नंबर 10, जो हमारे 10 नियम हैं, उसमें 9 नियम कुछ ना कुछ करने के हैं, और जो 10वां नियम है वो उन 9 नियमों को बांधता है, उसका बंडल बनाता है, उसकी पैकेजिंग करता है, उसको सुरक्षित करता है। यानी कि सारे जितने नियम हैं उनको सुरक्षा की गारंटी देता है, और इस बात की गारंटी देता है कि ये नियम ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी बदले जाएंगे, और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। यानी जो 9 के 9 नियम हैं, ये हमारा 10वां नियम है। दरअसल किसी भी अच्छे नियमों को बनाने में, या जहाँ जहाँ भी संविधान जैसे नियम बनते हैं, वहाँ पर ये नियम जरूर होता है कि अच्छे नियम ना बदले जाएं, ना ख़त्म किए जाएं, और ना ही अमान्य किए जाएं, उनकी मान्यता कभी ख़त्म ना हो। एक जो शब्द है पाली के अंदर चलता है, विनंधति। विनंधति का मतलब होता है लपेटना, लपेटता है, बांधता है, एनसर्कल्ड करता है, रैप करता है, रैपिंग करता है। मतलब किसी चीज के चारों तरफ अगर कोई चीज लपेटी जाए, रैप की जाए, या उसको एनसर्कल किया जाए, सर्कल में बांधा जाए किसी बात को, तो उसको पाली के अंदर विनंधति बोलते हैं। और जब लपेट जाता है तो उसको विनंधन बोलते हैं, लपेटन को विनंधन। और अगर जिस चीज से लपेटा जाए उसको बोलते हैं विनय, जिससे लपेटा जाता है। तो ये जो विनय शब्द है, जिसमें हम गारंटी देते हैं कि ये विनय जो 10 हैं, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य होंगे, और ना ही कभी ये खत्म किए जाएंगे, ये नियम नहीं है। विनय में और नियम में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो नियम शब्द है वो नियमेति से बना है। नियमेति का मतलब होता है फिक्स करता है, यानी कोई समस्या है, कोई चीज है, उसको फिक्स करता है, उसको अच्छी तरह से लिमिट के अंदर बांधता है, यानी उसकी लिमिट तैयार करता है कि यहां से यहां तक ये मैंने ठीक कर दी, इसको फिक्स कर दिया, स्थाई कर दिया, निश्चित कर दिया। ये जो नियमेति शब्द है उसका मतलब है, और इसी नियमेति से नियमन बनता है और उसी से नियम बनता है। यानी जो चीज फिक्स हो गई उसको नियमन बोलते हैं, उसका एक सेट होता है। और नियामक होता है एक शब्द, नियामक का मतलब होता है किसी चीज का ड्राइवर, हवाई जहाज का ड्राइवर, पानी के जहाज का ड्राइवर, या कोई आपने चीज बनाई है जिसकी लिमिट है कि ये यहां से यहां तक आपको ऐसे करके काम करना है, तो उसको नियामक बोलते हैं। आज के समय आप उसको ड्राइवर बोल सकते हैं या नियंत्रक बोल सकते हैं। ये जो नियामक है, संस्कृत करके इसको नियंत्रक बोला जाता है कि ये नियंत्रक है, इसके नियंत्रण में है, या ये नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा, इसको चलाएगा। जैसे हम कहते हैं जो बस है उसका नियंत्रण कौन करेगा, उसका नियंत्रण जो जिसको आज हम ड्राइवर बोलते हैं वो करेगा, और सह नियंत्रण कौन करेगा, सह चालक कौन होगा, जो कंडक्टर होता है। तो नियम शब्द अलग है, यहां हम नियम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये लिमिट में फिक्स नहीं किए गए हैं, ये विनय है। विनय का मतलब है कि ये बांधे हुए हैं, लपेटे हुए हैं। किसको बांधते हैं? पूरे संघ को बांधते हैं, पूरे संघ के चारों तरफ लपेटे हुए हैं। इसका एक सिंबॉलिक उदाहरण हमें वहां भी मिलता है, जब बुद्ध अपने पाथिमोक्ष के नियमों को हर 15वें दिन रिपीट कराते थे, याद कराते थे, तो चारों तरफ एक धागा बांधते थे। धागे के दो कारण, एक तो उसमें किस प्रकार के लोग ना आए, और वहीं आए जो उसके लिए तय किया गया है कि ये लोग आएंगे और ये लोग ही इसके अंदर रहेंगे, बाउंड्री के अंदर। और दूसरा, जो विनय बंधे हुए हैं, उन बंधनों का एक प्रतीक चिन्ह है कि ये विनय से बंधा हुआ संघ है, ये विनय के नियम से बंधा हुआ संघ है, इसको लपेटा हुआ है विनय से। तो क्या होता है संघ? संघ होता है जो विनय जितने आपने बनाए हैं, जितने आपने सील बनाए हैं, जितने आपने जो भी अपने आप को रेगुलेट करने के नियम, लॉ बनाए हैं, एक्ट बनाए हैं, कानून बनाए हैं, वो कानून एक आधार पर रखे रहते हैं। वो आधार उन कानूनों की एक सिला होता है जो उन कानूनों को होल्ड करके रखता है, उनको रोक के रखता है। बहुत सारे नियम बनते हैं, बहुत सारे विनय बनते हैं, बहुत सारे एक्ट बनते हैं, लॉ बनते हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हम सलाह बोलते हैं कि सलाह है, अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं, पर वो जहाँ रखी जाती हैं उसको बोलते हैं आधारशिला, फाउंडेशन, यानी कि उन सब चीज़ों के बनने की आधारशिला। तो ये पुराने समय से सिस्टम, जब से मनुष्य में चेतना आई है तब से वो कुछ आधारभूत चीज लेके चलता है। आधारभूत, भूत माने होता है तत्व, आधार माने बेस, यानी जो बेस है, आधार है, आधारशिला। शिला का मतलब होता है पत्थर, यानी मजबूत होता है आधार, कि कितना ही बड़ा मकान बनाओ, कितना ही इस पर नियम बनाओ, ये हिलेगा नहीं। ऐसे ही आधारभूत जो रचना और संरचना पूरे संघ के नियमों की, लॉ की, एक्ट की, विधि और कानून, ये सब बनाए गए सुझाव जो भी कुछ हैं जिनसे संघ चलता है, उनका जो आधार है वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो आधार मजबूत नहीं होगा तो जो भी उसके ऊपर आप नियम या विनय बनाओगे या जो भी एक्ट बनाओगे, लॉ बनाओगे, कानून बनाओगे, वो गिर जाएगा अगर आधार मजबूत नहीं होगा तो। इसलिए पुराने संघ के अंदर जो समर संघ था उसके आधार बहुत मजबूत थे और यही नियम थे। इसमें से कुछ नियम आज के समय जैसे चंदे का है, ये आ गया, पर उस समय पैसा नहीं लेते थे। उस समय पैसा नहीं लेने का नियम था, रजत नहीं लेने का नियम था, कोई चीज़ नहीं लेने का नियम था। आज उसको चंदा में लिखते हैं और बोलते हैं। उस समय कहीं किसी राजा के यहाँ हम पंजीकृत नहीं होते थे, किसी के पिंजड़े में कैद नहीं होते थे, आज़ाद रहते थे। आज उसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, पंजीकरण बोलते हैं, पर नियम वही हैं। नियम कोई भी चेंज नहीं है, नियम वही हैं, बस उनका टर्म, उनका नाम और उनको आज बोलने का तरीका बदल गया है, पर उनका गुण नहीं बदला। तो ये जो नौ नियम हैं ये पुराने संघ का आधार है, आधारशिला है, फाउंडेशन है। और अगर आपने किसी मीनार की, किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन बदल दी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है कि आप उसकी फाउंडेशन बदल दें और बिल्डिंग ना गिरे। अगर आपने, इसलिए कहते हैं कि जब कहीं प्रहार होता है, अरे इसकी तो नींव ही हिल गई, इसकी तो फाउंडेशन हिल गई, इसकी तो जड़ ही हिल गई, इसका तो आधार ही हिल गया। जिसका आधार हिल जाता है उसकी बिल्डिंग पूरी गिर जाती है। और अगर वो रुकी भी रहेगी तो उसमें तिड़कन फिड़कन आ जाती है, टूट फूट हो जाती है, वो कांपती है, गिरती है, झुकती है, पानी रिसता है, वो किसी काम की रहती नहीं है। तो संघ का आधार बड़ा मजबूत रहा और संघ के ये जो विनय हैं नौ, ये बड़े ज़बरदस्त विनय हैं। इसलिए जब भी लोग संघ को ख़त्म करेंगे, जब भी लोग संघ पर प्रहार करेंगे, जब भी संघ को बदलना चाहेंगे, जब भी संघ को अमान्य करेंगे, तो वो आधार पर हमला करेंगे। क्योंकि आधार पर हमला करना और उसमें अगर कामयाब होते हैं तो सारा संघ धाराशाही हो जाएगा, और अगर आधार की बजाय वो ऊपर छोटे मोटे नियम पे हमला करते रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आधार उन सबको संभाल लेगा। अगर पेड़ का जड़ और पेड़ की तना ही चला गया तो पेड़ बचता नहीं, पर दो चार डाली वाली टूट जाती हैं तो फिर उगाती हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए जिन भी लोगों ने संघ को कमज़ोर किया पुराने समय में या उसको जर्जर अवस्था में पहुँचाया, उन्होंने इसके जो आधारभूत विनय हैं उन पर प्रहार किया, उन पे हमला किया। वज्जी लोगों का जो संघ का जिक्र आता है, और भी जो गढ़ परिषद थी, और भी जो संघ थे हमारे, क्योंकि संघ पूर्व में और पश्चिम में बहुत सारे उसमें गढ़ों में थे, व्यवस्था संघ की बहुत थी, नियम सबके एक से थे। प्राकृतिक नियम संघों के एक ही रहते हैं, संघ के नियम बुद्ध ने अपने जिक्र में बताए, और वो नियम ये थे कि आपको संघ का आदेश मानना है, संघ में सभी बराबर होते हैं, संघ के अंदर आपने एक ही डिसीजन लेना है और बहुमत से लेना है, और अपने बहुमत से लिए हुए निर्णय पे चलना है, उसको बदलना नहीं है। आपने अपने पुराने जो लोग हैं जो संघ में काम करके गए हैं उनको पूरा इज्जत देनी है, यानी सीनियरिटी का नियम है कि सीनियरिटी में आपको इज्जत देनी है। आपकी जो महिलाएं हैं आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते शादी ब्याह करने के लिए, आपने उनको संघ का मेंबर मानते हुए पूरी इज्जत देनी है। किसी भी तरह का आप उनसे अपमान का या उनको ऐसा भाव नहीं आने देंगे कि वो कहीं कमज़ोर हैं या छोटी हैं। वो मान मर्यादा आपने पूरी करनी है महिलाओं की। जितने भी हमारे चैत्य हैं, यानी कि जो लोग हमारे पुराने रहे संघों में और जो मर गए और जिनके हमने पत्थर के चैत्य बनाए या किसी बिल्डिंग बनाई या कहीं कोई हमने इद्दकील गाड़ी कहीं कोई स्तंभ गाड़ा उनका, तो उन पर हम जाएंगे, उनको याद करेंगे और उनके गुणों को याद करेंगे कि इन्होंने इस तरह से काम किया। जो लोग आते जाते रहते हैं पर वो अच्छी बात बताते हैं, वो अर्हत होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, उनका मान सम्मान करेंगे, उनसे पूछते रहेंगे दीन दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ क्या गतिविधि है, क्योंकि वो जो आवागमन करते हैं, आवाजाही करते हैं, वो सारी दुनिया की खबर रखते हैं। तो वो हमारे समाचार हैं, मीडिया हैं, कोई मुसीबत आती है तो वो पहले ही बता देते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना है। ये सारे नियम उस समय चलते थे, व्यभिचार नहीं करना है और जो जितने भी बुरे कर्म हैं वो नहीं करने हैं। तो संघ बड़े मजबूत रहते थे और सन्निपात बाहुल करना है, ये सबसे प्रमुख नियम था कि जो सन्निपात बाहुल करते रहेंगे वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो ये नियम लगभग सब में चलते थे। तो जब हमारा समर संघ कमज़ोर हुआ, कमज़ोर पड़ा, तो ये नियमों को तोड़ा गया, इनको बदला गया, इनको अमान्य किया गया, तब जाके संघ कमज़ोर हुआ। पर उस समय नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद तो बहुत मजबूत हुआ जब बुद्ध ने भिक्कुओं का संघ बनाया और भिक्कुणियों का संघ बनाया। तो भिक्कू और भिक्कुणियों के संघ के नियम और भी ज़्यादा तगड़े थे, उनके तो बहुत ज़्यादा नियम बने और उनके आधारभूत में यही नियम थे। सारे नियम वही थे जो आधारशिला के बिना के, जो आज यहाँ 10 गोल्डन नियम हैं, वही भिक्कू संघ के नियम थे। वो भी पैसे नहीं लेते थे, उनका भी राजा के दरबार में कोई पंजीकरण नहीं था, उनका भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनके यहाँ कोई वर्ग भेद नहीं था, तब जाति तो थी नहीं, पर जो वमण का समण का भेद है वो उनके यहाँ नहीं होता था, क्योंकि उनके यहाँ सारे समण होते थे। ये कंडीशन थी कि यहाँ भेद नहीं चल सकता, इसलिए सबको समण होकर आना पड़ेगा, तो समणी समण थे। और ऐसा भी हो सकता है कि अधिकतर सारे समणी हो, कोई वमण हो ही ना वहाँ, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र तो है नहीं। बाद में लोगों ने कहा होगा तो वो वर्ग भेद माना नहीं जाता। उस समय सारे लोग जो खाना थे वो मिल बांट के खाते थे, क्योंकि उनका नियम मांगने का था, काम करते थे, पढ़ाते थे, उसके बाद मांग के खाते थे। उनके नियम साधारण जो समर संघ है उससे अलग होते थे, पर नियम सारे वही के वही थे। वो नियम चले, पर भिक्कु संघ ने जब अपने नियम छुपा लिए और लोगों को नहीं बताए, आज के समय भी जो भिक्कु लोग हैं पूरी दुनिया में, वो नहीं बताते कि उनके नियम क्या बने हुए हैं और उन्हीं नियमों पे चल के वो भिक्कु बनते हैं। वो भिक्कु तो बन जाते हैं उन नियमों से चीवल लेके, पर आम जनता को नहीं बताते कि ये विनय के नियम हैं। आम जनता को ये पता ही नहीं कि भिक्कु से कैसा व्यवहार करना चाहिए, भिक्कु को क्या नियम हैं, उसके नियम को नहीं तोड़ना चाहिए, उसमें हम उसके दोषी ना बने। पर वो नियम ऐसे हैं कि अगर वो आम जनता को पता चलते हैं तो भिक्कु को कई तरह का नुकसान होता है, और वो नुकसान उन्होंने खुद तय किया है, इसलिए होता है। संघ के अंदर कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो पैसा लेते हैं, विनय पीटक पैसा लेने को मना करता है। वो घरों में बैठ कर दावत लेते हैं, विनय पीटक घर में बैठने के लिए मना करता है। वो अकेले चलते हैं, विनय पीटक संघ में चलने के लिए बोलता है। वो कोई पद पोस्ट नहीं ले सकते, मंचमाला नहीं ले सकते, विनय पीटक मना करता है, पर वो मंचों पर चढ़ते हैं, पद पोस्ट लेते हैं। विनय पीटक कहता है कि आप शादी ब्याह नहीं करा सकते, पर वो शादी ब्याह कराते हैं। विनय पीटक कहता है कि आप ना लेप लगाओगे, ना चंदन करोगे, ना डांस देखोगे, ना डांस वाली जगह जाओगे, ना कहीं कोई ऐसी जगह जो आपको आपके नियम तोड़ती हो, जहां मद मस्त वाला कोई चीज़ हो वहां नहीं जाओगे, पर वो जाते हैं। शादी ब्याहों में भी डांस देखते हैं, सारी बातें हैं, और भी बहुत सारे नियम हैं जो उनके चलते हैं। तो भिक्कु संघ बताता नहीं, पहली बात तो भिक्कु संघ है ही नहीं, और जो भिक्कु हैं वो बताते नहीं। वो ये भी नहीं बताते कि उनकी जो एजुकेशन है वो कितनी है, यानी धम्मिक एजुकेशन कितनी है, क्योंकि 10 साल तक तो भिक्कू नहीं बन सकते, और 10 साल के बाद ही परीक्षा पास करनी होती है, उपसंपदा होती है, टेस्ट होता है, और टेस्ट में भिक्कू संघ बैठता है, और उसके बाद अगर वो पास करेगा तो वो भिक्कू बनेंगे, थेरा बनेंगे और 10 साल लगातार और मेहनत करेंगे तब महाथेरा बनेंगे, तो वो बताते नहीं। तो इसलिए भिक्कू संघ का पतन हो गया, भिक्कुड़ी संघ का पतन हो गया, क्योंकि जो विनय आधार था उनका, और उनकी तो किताब है जो वर्ल्ड फेमस है जिसको विनय पिटक बोलते हैं, और उनको तो विनय धर भी बोला करते थे, जो विनय धारण करते हैं, विनय उनको विनय से बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुआ करती थी। तो वो किताब उन्होंने छुपा ली, उसको बताया नहीं, लोगों को समझ में आया नहीं, किसी ने उसको सरल भाषा में बताया नहीं, पर उनका विनय का आधार खिसक गया, बेशक उन्होंने छुपाया तो वो भी ख़त्म हो गए, यानी कि उनकी आधारशिला टूट गई, तो भिक्कू संघ भी खत्म हो गया। उसके बाद में सम्राट अशोक का समय आया। सम्राट अशोक ने सारे के सारे जो राजकाज के नियम धम्म पे आधारित थे उनको शिलाओं पे लिखवाया, लोगों को बताया, लोगों को सिखाया, लोगों को पढ़ाया, लोगों को कहा अपने संविधान का इस्तेमाल करो, ये संविधान है जो भिक्कू संघ ने भी दिया है, पुराने श्रमण संघ ने भी दिया है और हमने भी इसको देखा है। बहुत सारे नियम उन्होंने पत्थर पर गुदवाए, जगह जगह बताते 84,000 पत्थरों की किताबें उन्होंने बनवा के लगवाई, कहीं स्तूप पर, कहीं शिला पर, कहीं पत्थर पर, जैसा जहां मिला। तो लोगों को जन जागृति हुई, लोगों को अपने संविधान के बारे में पता चला, लोगों को अपने विनय के बारे में पता चला, अपने नियम के बारे में पता चला, लोगों में जागृति आई। तो 16 महाजनपद इकट्ठे होके महाभारत बनाए और उन्होंने बहुत तरक्की की। सम्राट अशोक के बाद से लगातार तरक्की चलती रही और इतना ज़बरदस्त शासन कभी नहीं रहा, पूरी दुनिया में कभी नहीं रहा, सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो विनय के नियम सबको बताए जाते थे, वो संविधान के नियम सबको बताए जाते थे, वो धर्म के नियम सबको बताए जाते थे, और जब पब्लिक को पता चलता था तो पब्लिक उनका वायलेशन नहीं करती थी और करने देती भी नहीं थी। क्योंकि अगर लोगों को ये पता हो कि सड़क पर थूकना मना है और सड़क पर थूकना अवैध है और आप कहीं ऐसी जगह थूकिए जहाँ थूकने की जगह है और नहीं तो जुर्माना होगा, तो लोग थूकेंगे नहीं, और कोई और थूकेगा भी तो उसको पकड़ के कह देंगे देखो भाई तुमने थूका है, इसका जुर्माना दीजिए आप। पर अगर लोगों को ये पता ही नहीं है कि थूकना अवैध है या थूकना नियम में आता है, ये कानून जुर्माना है, तो वो जगह जगह थूकते फिरते हैं। हमारे देश में तो पूरा पूरा देश पानदान बना रखा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे हवाई जहाज है, चाहे वो बस स्टेशन है, चाहे कुछ भी है, हर जगह पिचकारियाँ छूटती रहती हैं, सब दीवारें लाल लाल की हुई हैं, क्योंकि उनको कोई बताता नहीं क्या नियम है क्या नहीं, और उसका पालन वालन भी होता नहीं। तो वो आधार जो विनय का आधार था वो उनका खिसक गया, उनके नियम बदल गए, उनके नियम अमान्य हो गए, उनके नियम जो ख़त्म किए गए, तो बदल गए, ख़त्म हो गए, अमान्य हो गए, तो वो भी ख़त्म हो गए, यानी जिसका आधार खिसक जाता है वो खुद भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में फिर संविधान इधर आया, और संविधान आने के बाद में बाबा साहब ने फिर दोबारा से आधार स्तंभ रखा, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं वो विनय का आधार हैं, जो प्रियम्बल है वो उसका आईना है, वो उसका टेस्ट चेक है, उससे होके सारे नियम बनते हैं। ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ा थोड़ा जितना भी था, पर संविधान के जो नियम हैं उनको बदलना शुरू कर दिया, उनको अमान्य करना शुरू कर दिया, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया, तो संविधान भी धीरे धीरे जो लोग थे उनका भी लाभ बंद होना शुरू हो गया और धीरे धीरे देश पतन की ओर चलने लगा। और जो उसकी पुरानी GDP हुआ करती थी, या जो पुराना उसके पास मुद्रा कोष होता था, या जो पुरानी खुशहाली थी, या जो देश के अंदर सब लोग पहले खुश थे उनकी खुशी में कम हो गई, उनके पास पैसे कम हो गए, और चारों तरफ परेशानियाँ हो गई, और ये परेशानियाँ जब तक चलती रहेंगी जब तक संविधान लगातार बदलते रहेंगे, या उसको अमान्य करते रहेंगे, या उसको ख़त्म करने के लिए जिक्र करते रहेंगे, ये तब तक चलता रहेगा। पर हमारे जो अब हम जो काम कर रहे हैं समर संघ में, इसमें क्या है पोजिशन, इसकी पोजिशन अगर आप देखेंगे तो शुरू शुरू में जो यहाँ लोग आए वो समझ नहीं पाए कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ 29 लाख जो संगठन हैं उनका कोई विनय आधार नहीं है, उनका कोई नियम का आधार भी नहीं है। ये 29 लाख संगठन जितने भी हैं, चाहे वो भिक्कुओं के हैं मठों में जो बना रखे हैं, चाहे उन्होंने कोई संघ टाइप की कोई संचालन सेवा बना रखी है, चाहे वो अपने प्रधान सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, धार्मिक लोगों की बात कर रहा हूँ जो भिक्कू और भिक्कुणी हैं, उन्होंने अपने आप बनाए हैं और विनय पीठक को छोड़ के बनाए हैं। यानी विनय पीठक में तो कहीं नहीं है कि आप राजा के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओगे, पर वो गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्योंकि उनको चंदा चाहिए, और जबकि वो चंदा ले नहीं सकते। तो उन्होंने जो नियम तोड़े हैं सारे के सारे, वैसा ही सिस्टम अगर आप देखेंगे तो हमारे और बाकी जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठनों में कहीं भी कोई विनय का आधार नहीं है, वो विनय को जानते भी नहीं है, वो संघ को ही नहीं जानते तो विनय को क्या जानेंगे, तो इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं है। वो सिर्फ एक छोटी सी किताब जो रजिस्ट्रार होता है, वो जो रजिस्ट्रार एक्ट में रजिस्ट्रेशन करता है रजिस्ट्रार दफ्तर में बैठ के, उसके पास जाते हैं और दो चार नियम लिखते हैं, मैं इसका मालिक, ये इसका सह मालिक, ये इसका खजाने का मालिक, ये इसका संगठन का मालिक, ऐसे दो चार मालिक उसमें नाम लिखवाते हैं और दो चार टर्म्स कंडीशन लिखते हैं। वो रटी रटाई होती हैं, कॉपी पेस्ट चलती रहती हैं सबकी, कहीं से ले लेते हैं और उसको जमा कर देते हैं और मालिक बन जाते हैं, हमने भी एक दुकान खोल ली। उनके कोई आधार नहीं होता, जैसे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, आधार हैं, जैसे जो इसकी उद्देशिका है वो इसका प्रियम्बल, इसका आईना है जिससे सारे जो नियम या विनय या एक्ट या जो भी कुछ निकलते हैं उससे पास होकर जाते हैं, पर संगठनों का ऐसा कोई आईना नहीं होता। संगठन किसी भी तरह से अपने आप को ये नहीं चेक कर सकते कि जो उन्होंने नियम बनाया है वो विनय के अनुसार है नहीं है, या जो उन्होंने कुछ विनय जैसा आधार बनाया हो, क्योंकि वो जानते नहीं कि क्या है क्या नहीं। इसलिए सारे संगठन बेसलेस हैं, आधारहीन हैं, उनके पास में विनय आधारशिला नहीं है, उनके पास में कहीं कोई आधार नहीं है। जब उनके पास कोई आधार ही नहीं है और कोई विनय नहीं है तो उनका टूटना और उनका फूटना बहुत आसान है, उनमें तुरंत झगड़ा होता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके कोई बंधे बंधाए फिक्स ऐसे विनय के नियम नहीं है जो उनको रोक के रखें, जहां वो अपने आप को चेक कर सकें। वो करना भी नहीं चाहते, कौन चाहेगा, कौन कहेगा चंदा ना लो, कौन कहेगा कि आपस में जाति का भेद मत करो, यहाँ तो जाति के संगठन बने हुए हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं लोग जाति के नाम से, कौन कहेगा कि यहाँ केवल समण आएंगे, कौन कहेगा कि यहाँ पद पोस्ट मंचमाला नहीं होनी चाहिए, ये सब विनय के नियम हैं, वो नहीं बनाते। ऐसे ही यहाँ जितने भी लड़कों के दलबल हैं या जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, किसी के भी संगठन में विनय का आधार ही नहीं है, क्योंकि संगठनों में हो ही नहीं सकता। संगठन मालिक बनाता है और मालिक अपने आप को विनय के आधार में क्यों कैद करेगा, क्यों वो रूल फॉलो करेगा? अगर वो रूल फॉलो करेगा तो उसको संघ की बात माननी पड़ेगी, संघ बन जाएगा, और संघ की बात माननी पड़ेगी तो फिर उसे कौन पूछेगा, वो काय का मालिक रहेगा? इसलिए होता नहीं है। तो वो सारी उनकी बात है, इसलिए वो लगातार टूटते फूटते रहते हैं और उनसे कोई परिणाम नहीं आने वाले। पर यहाँ जो हम समर संघ का काम कर रहे हैं, समर संघ ने जब काम स्टार्ट करना शुरू किया तो सबसे पहले हम वी द पीपल संविधान के रूप में इकट्ठे होते थे, क्योंकि संविधान हमारा नेता है और संविधान हमेशा हमारा नेता रहेगा, क्योंकि संविधान सांघिक प्रक्रिया से बना हुआ है, संघ के आधार पर बना हुआ है, उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका एक आधार है और वो बहुत मजबूत आधार स्तंभ है, क्योंकि वो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल है, इसलिए वो गिर नहीं सकता, उसको बदला जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसको अमान्य किया जा सकता है, पर संविधान के लोगों द्वारा संविधान के ही तहत किया जा सकता है। पर जब तक जैसा भी है वो संविधान हमारा नेता है, जब पूरा बदल जाएगा, अमान्य होगा, फिर जो पुराना संविधान है उसे मानेंगे या जो हाउस तय करेगा वैसे देखेंगे, पर अभी हमारा नेता है। तो संविधान हमारा नेता है तो हम वी द पीपल का वी लगा के काम शुरू करते थे। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, लोगों ने कहा कि वी द पीपल तो हमारा है, हमारा है, ले जाओ भाई अगर आपका है तो। हम तो समण लोग हैं, धीरे धीरे करके हम समण पे आ गए और फिर अपने संघ में हम स्थापित हो गए और स्थापित होते चले आए। वहाँ जो नियम थे वहाँ से लेके और संविधान के सारे नियम एक हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत इसमें है नहीं। पर कुछ लोग इसको नहीं समझ पाए तो वो क्या करने लगे, उन्होंने विनय के जो नियम थे, जो 10 गोल्डन रूल थे, वो माने नहीं। कुछ ने उनको बदलने की कोशिश की और कुछ ने उनको ख़त्म करने की कोशिश की, जाने से या अनजाने से, क्योंकि नई नई चीज़ थी, उनको लगता है कि ये हमारे बस की नहीं है, बंधन है, तो हमें रहना है लोगों के साथ में, क्योंकि हो सकता है कि कल को हम राजनीति में उतरें, इसलिए लोगों को छोड़ना नहीं चाहते, तो चलो नियमों को ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को नियम सूट नहीं करते थे, खासतौर से वो वाला नियम जिसमें लिखा हुआ है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, तो बहुत कोशिश की उन्होंने ये कहने की, नहीं राजनीति तो जरूरी है, राजनीति तो चाबी है, ये है वो है, पर संघ बहुत लचीला होता है, कठोर भी होता है, लचीला भी होता है। संघ को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे लचीली तलवार होती है। तलवार दो तरह की होती है, एक तलवार ऐसी होती है जो लचीली होती है, कहीं भी मुड़ जाती है, पत्ती की बनी होती है, उससे आदमी नहीं मरता, उससे जानवर नहीं कटता, उससे कोई रक्षा नहीं होती, जब भी आप तलवार चलाओगे वो चलने से पहले मुड़ जाएगी, टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो लोहा होता है बस, 20 रुपये किलो का लोहा और कुछ नहीं होता। पर जो सबसे एक तलवार ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, बिल्कुल अगर आप मारोगे पत्थर पर कहीं तो वो या तो पत्थर को तोड़ देगी या खुद टूट जाएगी, बस उसके दो ही परिणाम आते हैं, वो तलवार भी बेकार होती है, पर सबसे बेहतरीन तलवार होती है जो कठोर भी होती है और जो लचीली भी होती है। उसका वार बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वो समय और मौके के हिसाब से मुड़ भी जाती है, टूटती भी नहीं है, और इतनी कठोर होती है कि गला भी साफ कर देती है, और धार बहुत तेज होती है उसकी। तो यहाँ जो नियम हैं सारे के सारे संघ के, जो विनय पीटक के नियम हैं और जो संघों के नियम होते हैं, वो उस तलवार की तरह होते हैं जो बहुत तेज धार के होते हैं, वो लचीले भी होते हैं और बहुत ज़्यादा कठोर भी होते हैं, और अपने मकसद को निकाल के लेके जाते हैं। ये सारे संघों का नियम है। इसलिए जो लोग जिन लोगों ने ये सोचा कि हम यहाँ नियमों को बदल देंगे, वो बेचारे खुद ही बदल गए, उनको भागना पड़ा। वो जाते जाते यहाँ कुछ इल्जाम लग गए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सारे संघों में होता है और होता रहेगा। पर संघ कभी भी किसी भी हालत में किसी के राइट्स नहीं मारता। तो ये नियम बना के दिया गया कि भाई आपको राजनीति में जाना है तो जाओ, पर संघ नहीं जाते राजनीति में, इसमें कोई शक नहीं है। और ये नियम इसलिए अच्छा है क्योंकि संघ कभी झूठ नहीं बोलते। अगर संघों का कहीं कोई बात अगर बात में झूठ निकलती है तो वो संघ में जहर का काम करती है, संघ तुरंत खत्म हो जाता है। पहले भी ऐसा हुआ है, और ख़ास तौर से अगर आप बामसेब की हिस्ट्री देखेंगे तो साहब काशीराम ने जब बामसेब बनाई तो संघ के थोड़े से पैटर्न पर थी। उन्होंने दो बातें उसके अंदर रखी कि एक तो वो जो बामसेब संगठन है वो कभी धर्म में नहीं जाएगा, यानी धार्मिक बात नहीं करेगा, और एक उन्होंने ये बात कही थी कि वो गैर राजनीतिक है, यानी गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक और सामाजिक है। ये बात उन्होंने रखी थी। उन्होंने बात के अंदर जो की उसको बात को रखा भी, और उन्होंने सामाजिक को सामाजिक रखने की कोशिश की, बाद में वो टूट गया और फिर उन्होंने राजनीतिक बना लिया, पर बामसेफ उन्होंने छोड़ दी, इसलिए उनका दोष नहीं है। पर बाद में जिन लोगों ने बामसेफ चलाई और बामसेफ का पैटर्न उन्होंने लिया कि गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक, वो जो बामसेफ के बाद में जितने टुकड़े हुए उन्होंने अपनी बात को नहीं रखा, और कुछ समय बाद वो राजनीतिक भी हो गए और कुछ समय बाद वो धार्मिक भी हो गए। अब वो धर्म के नाम से, धर्म के नाम से भी पैसा इकट्ठा करते हैं और राजनीतिक पार्टी के नाम से भी, क्योंकि उनका धंधा सामाजिक से नहीं चल पाया, उनको ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो सरकारी कर्मचारियों से होता हुआ उनका सारा राजनीतिक और धार्मिक हो गया। ये झूठ बोला उन्होंने। अगर वो पहले ही कहते कि हम राजनीतिक भी जा सकते हैं, हम धार्मिक भी जा सकते हैं, तो लोग जो इनको जाना है वो जाए ना जाए, पर लोगों का यकीन नहीं टूटता है। पर वहाँ उन्होंने लोगों का यकीन तोड़ दिया। जाना बुरी बात नहीं है, राजनीति है तो करिए, कि धर्म है तो जो आपको मजहब और पंथ अच्छा लगता है जाइए, भारत का संविधान स्वतंत्रता देता है। पर आपने जो कहे, जो आपके वर्ड्स थे, जो आप स्पीकिंग कर रहे थे, जो लोगों को भरोसा दिला रहे थे, उससे लोगों का भरोसा टूट गया। अरे ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक से धार्मिक भी हो गए, राजनीतिक भी हो गए, तो इनका भरोसा नहीं है कि आगे ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सामाजिक काम के अंदर, खास तौर से संघ के अंदर, अगर एक भी डिसीजन गैर भरोसे का हो गया, एक भी बात जो कही है आपने और वो संघ को बिना बताए बिना पास कराए आपने बदल दी, आपने अपने फंडामेंटल नियम तोड़ दिए, आपने अपना विनय जो आधारशील है खुद ही बंद कर दिया। खुद ही तो संघ ये कहता है कि ये नियम कभी नहीं बदले जाएंगे, ना कभी ख़त्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य होंगे, और खुद ही किसी भी नियम को अमान्य कर दे या खुद ही किसी नियम को बदल दे या किसी नियम को ख़त्म कर दे, तो फिर संघ का यकीन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। लोग हमारे किसी को बुरा नहीं कहते, पर जितने संघी यहाँ सक्रिय हैं और काम करने वाले हैं, चाहे वो 10,000 हैं चाहे 20,000 हैं, इनका भरोसा लोगों से उठ जाएगा, जो करोड़ों लोग हैं उनसे उठ जाएगा। इसलिए संघ अपने नियम कभी नहीं बदलता, और वो जो नियम होते हैं वो हाउस पास करके बनाता है और हाउस के द्वारा बनते हैं। तो कोई ये कह सकता है कि भाई आप तो लकीर के फकीर हो, आपने तो नियम बंद कर दिए, संघ क्या नियम ऐसे बंद होते हैं क्या? तो नियम बंद भी नहीं है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रखा हुआ है कि 2/3 मेजोरिटी से कोई भी नियम बदल सकते हैं, तो बदला जा सकता है। जैसे बुद्ध ने आखिरी समय आनंद को ये कहा कि आनंद कुछ नियम जो प्रैक्टिस में ना आए उनको ख़त्म कर देना, और जो नए नियम प्रैक्टिस में आए और जो संघ के अनुरूप हों, धर्म के अनुरूप हों, उनको ले लेना। ये बात उन्होंने कही। और संघों के हिसाब से जैसे बुद्ध को जब सजा हुई, सिद्धार्थ गौतम को सजा हुई, और सजा होने के बाद में जब वो शाक्य संघ से निकाल के बाहर खड़े कर दिए चले गए, और बाद में जब कोलियों का और शाक्यों का झगड़ा ख़त्म हो गया और उनमें आपस में बात करके सुलह हो गई और युद्ध नहीं हुआ, तो उन्होंने बुद्ध के जो डिसीजन लिया था बुद्ध का कि सिद्धार्थ गौतम का कि देश निकाला गया, वो वापस ले लिया। तो लचीलापन भी है, क्योंकि लचीलापन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर भी एक नियम है, संघ आदि से सबोपरि, यानी संघ का आदेश सबसे बड़ा है। और ये बात मैंने कई दफ़े बताई आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, ना खाता ना बही, जो संघ कह दे वो सही। क्योंकि बाय द संघ, फॉर द संघ, ऑफ द संघ है, संघ ही नियम बनाता है, अपने लिए बनाता है और संघ के नियम ही होते हैं। इसलिए ये जो विनय के आधार हैं ये भी संघ ने बनाए हैं, इसलिए संघ सबसे बड़ा होता है। संविधान का जो प्रियम्बल है वो कहीं आसमान से नहीं आया है, उसको प्रियम्बल को बनाने वाला भी संघ है, और जो फंडामेंटल राइट हैं उनको बनाने वाला भी संघ है, और वो संघ के द्वारा हैं और संघ के लिए हैं और संघ के हैं। इसलिए वी द पीपल, हम भारत के लोग हर चीज़ से बड़े हैं। इसलिए ये कहावत है और इसको गांठ बांध दीजिए, ना खाता ना बही, और जो संघ कह दे वो सही, ये दुनिया में चलता है। इसलिए संघ सबसे ऊपर होता है और वो खुद अपने नियम बनाता है, जो अपने लिए बनाता है और खुद कहता है कि ये नियम हमने बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं और ये मान्य हैं और ये सबोपरि हैं। सबोपरि मतलब खुद नियम बनाता है और खुद के लिए कहता है कि नियम ऊपर हैं, यानी कि अपने बनाए हुए नियमों को अपने से भी ऊपर रख के वो चलता है। ये संघ की खास बात है। और संगठनों की क्या खास बात है? संगठनों में जो नियम बनाते हैं वो व्यक्ति नियमों से ऊपर अपने को रखते हैं, ये उल्टा नियम है वहाँ पर। और यहाँ व्यक्ति जो सारा समूह बनाता है फिर उसको पालन करता है, उसके लिए मरता है और जीता है कि ये मेरे संघादि शेष हैं, इन पर मैं जीऊँगा, इन पर मैं मरूँगा। इसलिए ये जो बंडल बंधा हुआ है, जो विरंधति की होती है, यानी रैप होता है सारे सारे नियम, और विनय के चारों तरफ ये नियम लपेट के एक आधार स्तंभ मौजूद बनता है, इस पर प्रहार किए जाते हैं। तो कैसे किए जाते हैं? या तो इसकी रस्सी को ढीला करने की कोशिश की जाती है जो बंधी हुई है। क्या ढीली करने की कोशिश की जाती है? किसी संगी को खरीद लिया, व्यवचार में फंसा लिया, उसको कोई जुर्म करा दिया, या कोई मजबूरी खरीद ली उसकी, या मजबूर कर दिया, या उसके अंदर कोई राग द्वेष पैदा कर दिया, तो रस्सी थोड़ी ढीली हो गई। अगर संघी लालच में फंस जाएंगे, राग द्वेष में फंस जाएंगे, द्वेष में फंस जाएंगे, एक दूसरे से दुश्मनी में आ जाएंगे, एक दूसरे से बदला लेने में आ जाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में आ जाएंगे, एक दूसरे को ऊंचा दिखाने में आ जाएंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, एक दूसरे के सामने अहंकार प्रदर्शित करेंगे, एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे, या एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हो जाएंगे, अगर संघी ऐसे हो जाएंगे तो कभी भी कहीं भी वो कमज़ोर पड़ सकते हैं, और किसी भी नियम को जो नियम विनय आधार के अनुरूप ना हो, उसके उल्टा हो, उसको पास कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ी इसमें रिलैक्सेशन का नियम ले आइए। जब भी संघ खराब हुए हैं, उनके जो नियम है, आधारभूत नियम है, या तो वो थोड़े से बदले गए हैं, या कोई रस्सी ढीली गई है, या उसमें लालच पैदा करके वो कमज़ोर किए गए हैं, या उस पर कोई ऊपर से जामा पहना दिया गया है, या उन सारे नियमों को बदल के कोई और नियम उसी रूप में रख दिए गए हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि वही नियम रूप बदल के सामने रखे जाए। अधिकतर जो संघ टूटते हैं वो ऐसे टूटते हैं कि आधारभूत नियम के समक्ष कोई नियम पेश किया जाता है और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा वकालत की जाती है, इतनी ज़्यादा दलील दी जाती है, ये ठीक है नियम, ये ऐसा नियम ठीक है, ये होना चाहिए और ये बढ़िया है और ये पहले वाले से बढ़िया है और ये नियम ऐसा है वैसा है, और उस समय जो लोग सोच नहीं पाते और मेहनत नहीं कर पाते, वो गलती से नियम पास कर देते हैं ये सोच के कि उससे अच्छा है। पर नियम पास कराने वाला जानता है कि वो कौन सा नियम पास करा के इसको कहाँ इस्तेमाल होने वाला है, कौन सा विनय पास करा के कहाँ इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए जब भी संघ टूटते हैं या जब भी संविधान टूटते हैं, उसमें नियमों की या तो मरम्मत करते हैं, उनको बदलते हैं, या नियम को उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और या नियम में डिफ्लेक्शन पैदा कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, उसको बदल देते हैं और अपने पक्ष में कर लेते हैं, इफ़ और बट लगा के। इफ़ और बट का बड़ा है, यानी कि किंतु परंतु लगा के उसको अपने फेवर में कर लेते हैं। एक एक शब्द की कीमत होती है संविधान के अंदर, तो वो कर लेते हैं, तो पता नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक यहाँ बताया जाता है, मुझे नहीं पता कि वो बात सच है या गलत है, पर बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब जो शेड्यूल ट्राइब है उनको रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने लिखा भील मीना, तो भील मीना एक शब्द था, और किसी ने कॉमा लगा दिया, भील अलग कर दिया, मीना अलग कर दिया, तो आज जो राजस्थान में जो मीनाओं को मिलता है वो मीना अपने आप को अपर कास्ट बोलते हैं, बड़ा आदमी बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं, वो अपने आप को मानते नहीं, और सारा रिजर्वेशन पूरे देश का उन मीनाओं को मिलता है। बताते तो ऐसा है कि बाबा सामने भील जो लोग थे जंगलों में रहने वाले, भील मीना को दिया था, पर मीना ये ले गए, लोग नाम बदल बदल के मीना लगा लगा के ले गए। पता नहीं ये बात सच है या खराब है, पर एक एक कौमा बिंदी का असर चारों तरफ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए यहाँ जो ये दसवां नियम है हमारा, ये दसवां नियम नौ नियमों को लपेट के मजबूती से रखता है, संघ में अब या बाद में। देखो ये सारे लोग जितने भी हैं ये अजर अमर तो है नहीं, इनमें से कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ रहेंगे, कुछ नए आते जाएंगे, संघ चलता रहेगा, वो तो रुकता नहीं। तो अब या बाद में जब कभी भी इन दस नियमों को कोई छेड़े, या इन दस नियमों को कोई बदले, या इन दस नियमों को खत्म करने की बात करे, या इनमें से कहे कि ये नियम ठीक नहीं है, ये नियम क्या है क्या नहीं है, तो बेहतर होगा कि उस पर चर्चा ना की जाए, बेहतर होगा कि उसको छोड़ दिया जाए, बेहतर होगा कि उसको दसवां नियम बता दिया जाए, जब तक कोई भारी इमरजेंसी ना आ जाए, जब तक पूरे संघ को ये ना लगे और 100% संघ को ये ना लगे कि अब ये ऐसा होना चाहिए, तब तक नियम को छेड़ा नहीं। क्योंकि आधार स्तंभ को सबसे पहले चोट मारी जाती है, जो शातिर बदमाश होते हैं जो संघों को तोड़ते हैं सबसे पहले आधारभूत नियमों में सेध लगाते हैं। जैसे संविधान में आपने देखा होगा वो धर्म निरपेक्ष जो शब्द था उसके प्रीएम्बल में उसको पंथ निरपेक्ष कर दिया गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं, पर जो चीज़ उसमें जोड़ने की थी वो जोड़ी नहीं। उसमें जो हमें जो इसकी जो पैसे वाला जो हिस्सा था कि सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए, और जितने भी देश में नागरिक हैं उनको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए कि उनको पैसा मिले, उनको पेंशन मिले, उनको बेरोजगारी भत्ता मिले, यानी जो सुरक्षा थी, आर्थिक सुरक्षा थी, उसमें आर्थिक सुरक्षा का जिक्र नहीं है। उसमें जो सामाजिक सुरक्षा थी जिसमें कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए, उसका जिक्र नहीं है, बस राजनीतिक सुरक्षा रह गई हमारे लिए। तो वो चीज़ें सारी की सारी एक एक करके लोग उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसलिए सावधान रहना है और हमेशा अपने संघ को प्रोटेक्ट करना है, बहुत वाइजली काम करना है। 10 के 10 गोल्डन नियम लगभग पूरे हो गए हैं, दोबारा से हुए हैं, 40-40 मिनट के, 30-30 मिनट के, 50-50 मिनट के ये हैं। जितने संगी हैं उनको बार बार सुनें, बार बार उनको पढ़ें, बार बार देखें, ये लगातार मॉडिफाई होते रहेंगे, लगातार ये बढ़ते रहेंगे, लगातार इनमें जुड़ता रहेगा, लगातार और बातें होती रहेंगी। क्योंकि कोई भी चीज़ जो संघ की है वो कोई छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, और संघ का जो पूरा चैप्टर है वो बहुत कमाल का और बहुत बड़ा है। सारी दुनिया में जो लोग संघ को समझ गए वो जीत गए, और जो लोग संघ के शब्द को भी नहीं जाते हैं वो गुलाम हैं, कहीं पर टट्टियाँ उठा रहे हैं, कहीं पर चमड़ा काट रहे हैं, कहीं पर बकरी चला रहे हैं, कहीं पर खेत में पानी लगा रहे हैं, कहीं पर रिक्शा चला रहे हैं, कहीं सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। जो संघों को नहीं जाने उनकी ये हालत है, और जो संघों को जान गए वो बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं, सब पैसा है, सारी सुरक्षा है, सारी ज़मीनें हैं, सारी इंडस्ट्री है, सारी पावर है, सारे नियम हैं, सारे कानून हैं, सारे अस्पताल हैं, हर चीज़ उनके पास है। इसलिए अगर आपने हर चीज़ प्राप्त करनी है तो सिर्फ हर चीज़ प्राप्त करने का एक रास्ता सबसे आसान है, और वो है सांघिक होना, संघ में आना, संघ में जुड़ना। जो जुड़े हैं वो मजे ले रहे हैं, जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जो जुड़े हैं उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, जो जुड़े हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं उनके पास पैसे ही पैसे हैं, जो जुड़े हुए हैं उनके पास सारी ज़मीन है, जो जुड़े हुए हैं उनके पास सारी इंडस्ट्री है, जो जुड़े हुए हैं उनके पास सारी शिक्षा है, जो जुड़े हुए हैं उनके पास सारी नॉलेज है, और जो नहीं जुड़े हैं वो धक्के ही खा रहे हैं। इसलिए अगर धक्के नहीं खाने हैं और हर चीज़ प्राप्त करनी है तो जुड़ें और जीतें, जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे। मेरे इस वक्तव्य में अगर कोई अगर कमी या किसी को कुछ खराब लगा हो तो मैं उसे माफ़ी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। जय भीम, नमो बुद्धाय।